ओम शांति। अभी हम सबके सामने आदरणीय भ्राता आतम भाई है, विशेष आप प्रिंटिंग प्रेस संभालते हैं। शुरू से जो बाबा ने चित्र भी बनाए हैं, सभी सेंटर्स पर चित्र के लिए आप चित्र भी प्रिंट करते थे दिल्ली में, उसके बाद बाबा ने आपको शांतिवन में बुला लिया है और अभी आपको पता है कि हमारे जो भी मैगजीन प्रिंट होते हैं, हिंदी विशेष हिंदी मैगजीन आप प्रिंट करते हो, सारी बुक्स जो प्रिंट होती है वो भी हमारे नीचे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, आपने देखा है प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, तो हम आतम भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बाबा और मम्मा के समय से बाबा के यज्ञ में हैं, इसलिए आज आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आज कहानी का क्लास है, समझा? बाबा और मम्मा के साथ के जो अनुभव है वो भ्राता हमारे साथ शेयर करेंगे। आतम भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चे क्या है, मीठे तो है ही, सौभाग्यशाली है कि और कुछ है। हाँ, जो बाबा ने मुरली में कहा है कि हम सौभाग्यशाली नहीं बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों बोला पद्मा पदम भाग्यशाली है बताओ? एक तो हमको क्या, हमारे हर कदम में पदम, अगर बाबा की याद में कदम उठता है तो पद्मों की कमाई होती है और हमारा जीवन भी क्या बन जाता है, पद्म फूल को भी कहते हैं ना, हमारा जीवन भी पद्म समान, कमल फूल समान जीवन बन जाता है। तो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के नूर रतन, बहुत 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 भाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली है। देख लो, और आप देखो कहां भट्टी करने आए हैं बताओ? ये भट्टी है आपकी, देखो पकने के लिए आए हैं। बहुत अपने को आत्मरूपी बैटरी को बहुत चार्ज कर लिया होगा, लगता है चार्ज कर लिया है और चार्ज होके जा रहे हैं, बड़ा भर के जा रहे हैं, जाके यूज भी करेंगे और भी भरेंगे और सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मधुबन और किस स्थान पर आप आए हैं, आप सोचो ये स्थान कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे ऐसा स्थान है, परम पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, बाबा का ना आबू तीर्थ स्थान है। भारत तो है ही सारी वर्ल्ड का तीर्थ, और वर्ल्ड में भी जो तीर्थ स्थान है ये भारत का और सारे वर्ल्ड का तीर्थ स्थान है वो है आबू, और वो पांडव वन पर, ये है मेन। तो इससे सब और निकले हैं, शांतिवन ये वन वो सब उसी ब्रांचेज है, लेकिन जो हमारा हेड ऑफिस है यहाँ इस धरणी पर किसके कदम रखे, कितने कदम रखे, स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के जगदम्बा सरस्वती के कदम यहां पड़े हैं। बताओ, विचार करो, ये इट इज ए रियलिटी, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमने खुद देखा है, रियल देखा है, उनके साथ मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत की है, उन्होंने मुख में गिट्टी खिलाई है, हाथ उनकी उंगली पकड़ के हम चले हैं, नकी लेक तक घूमने गए हैं, ऐसी बात, उनसे खेल किया है, बैडमिंटन खेला, क्रिकेट भी खेला है, बताओ ऐसे आप बताइए, ऐसे आदि पिता, देखो ये दो हस्तियां हैं, तीन हस्तियां, एक शिव बाबा जिसको वो अल्लाह कहे, खुदा कहे, ईश्वर कहे, गार्ड कहे, उसकी मान्यता सब धर्मों में है। किसी ने कैसे रूप में ईश्वर को तो मानती है, गार्ड को ईश्वर तब मानते हैं। दूसरी ये दो हस्तियां और हैं, ब्रह्मा सरस्वती, हम लोग मानते हैं, हिंदू लोग जैसे कहते हैं, या हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले उसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, और मुसलमान उसको वो आदम और बीवी कहते हैं, शायद हवा ऐसे कुछ कहते हैं है? और वो इंग्लिश क्रिश्चियन लोग इसको एडम एंड ईव कहते हैं। अब मालवणी बुद्ध वाले क्या कहते होंगे, यानी इसकी भी शिव बाबा के साथ इनकी भी सब धर्मों में सब धर्मों में मान्यता है। तो आप ऐसे, और वो जैनी महावीर कहते हैं इनको, यानी भिन्न भिन्न नाम रूप से सब मानते हैं। अवश्य तीन हस्तियों की तो बहुत मान्यता है। तो देखिए आप ऐसी धरने पे आएंगे, एडम एंड ईव, आदम और बीबी, और ब्रह्मा सरस्वती जिनके यहां पांव पड़े, जिन्होंने अपनी ज्ञान मुरली से सुना करके बच्चों की को रिफ्रेश किया, उनकी पालना की, जिनके साथ ब्रह्मा भोजन खाया, मुख में गिट्टी खिलाई और बाबा खेल किया ऐसे बच्चों के साथ। तो ऐसी धरनी पर आप आए हैं, ये भी बहुत 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 सौभाग्य है, सभी नहीं आ सकते। और अब तो समय ऐसा आता जा रहा है, ऐसी भीड़ होती जा रही है, इतनी भीड़ होती जा रही है, कौन ऐसे आएगा बताओ। आप पहुंच गए, ये बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, मैं जब बाबा बोलता हूं ना, बाबा, वो कौन सा बाबा समझते आप? बा और बा दोनों है, सुन लो आप, हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए एक वो भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम ब्रह्मा बाबा को खुदा ईश्वर को हम भी नहीं मानते, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, परंतु लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है, जुदा नहीं। यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा नूर है, ज्योति बिंदु, ब्रह्मा बाबा भी है, लेकिन जो बाडी है वो तो ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा किसे कहेंगे, दोनों बा और बा मिला के बाबा हो जाता है। तो अब जब सुनाएंगे तो दोनों का साथ साथ ही होता है वास्तव में, वी कैन नॉट सेपरेट, इनको अलहदा नहीं कर सकते। तो मैं पहले थोड़ा सुना दूं कि कैसे हम ज्ञान में आए और कैसे बाबा मामा से मिले। अब आप चंडीगढ़ के आसपास के सर है, तो हम भी चंडीगढ़ के आसपास के थे। हम क्या हम 1957 में ये पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज था, अपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, आपने सुना होगा शायद, वहां से भी कोई हो है जी, पास ही है। अच्छा, तो हम वहां पर पढ़ते थे, तो आप जानते हॉस्टल में रहते थे, जीवन जो था एक स्वच्छंद था, कोई पूछने वाला नहीं, पिक्चर देखते थे, ये वो सब प्रकार के, बुरी आदतें बहुत ज्यादा नहीं थी, ये छोटी मोटी आदतें तो थी, हॉस्टल लाइफ में थी। तो हमारे एक ओम प्रकाश भाई है, अब तो नहीं है, चले गए, ओम प्रकाश अंबाला से ज्ञान सुन के आए थे। हमें ज्ञान कैसे मिला बाबा का, वो आए ज्ञान सुन करके, तो वो पहले एडमिशन लेने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, उस वक्त को एडमिशन मिलना बड़ा डिफिकल्ट था, कॉलेज कम थे और लेने वाले बहुत थे, आजकल तो हर शहर में कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जब उनको एडमिशन मिल गया और ज्ञान उनको तब मिल गया, तो उसने कहा आप तो विनाश सामने खड़ा है, तब भी लगता था विनाश सामने खड़ा, हम बता दें आपको, जैसे आप लगता ना विनाश सामने, लगता ना विनाश सामने आए, क्या लगता है आपको, लगता है बिल्कुल जैसे सिर पर खड़ा है विनाश, तब भी ऐसे लगता था, कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य होती थी जैसे कि विनाश हुआ क्यों हुआ। वो 1957 था, और 1857 में तो हुआ थी लड़ाई हुई थी हमारे भारत में, बहुत खूनरेजी हुई थी, भाई 100 साल बीत गया, 100 साल के बाद फिर भी होगा ये, ऐसा हम लोगों का विचार था। और बाबा तो हमेशा कहते, जब से ज्ञान में बाबा प्रवेश किया, शिव बाबा ने कहा अगली दिवाली भी नहीं आएगी, ये बाबा पता ना आप लोगों दादियों को कहते थे, टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, तब भी क्यों समय कम, कहा बाबा ने कि कार्य बहुत करना है, आप बताइए, पिछले 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना, आप बताओ, और अगली 21 जन्म क्या सारे क्लब की कमाई को जमा करना, कम बात थोड़ी है। अपने में देवगुरु की धारणा करना, अपनी प्रजा बनाना, अपना स्वराज, अपना राज स्थापन करना, कितनी बड़ी बात है, कितने कार्य है। तभी बाबा ने कहा कि समय कम है, और आप तो हाई समय कम, हम बताए वो तो कहा आप तो बहुत ही कम कम और कम है समय, कुछ ज्यादा आप समय बचा नहीं है। दुनिया बहुत तेजी से विनाश के खड्डे में गिरने के लिए भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी, रेसिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, ऐसा देखने में आ रहा है। तो अब तब भी कहा भी वो जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उसी दौरान उनको ज्ञान मिल गया, तब उसने कहा कि मैं तो पढ़ाई एडमिशन भी छोड़ो, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा, कोई 4 साल पढ़ाई करो, ये करो, फिर बुद्धि में दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ये चीजें डालो और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग, अपनी बुद्धि को इसमें क्यों करना में लगाना है। बाबा कहता है मुझको याद करो, हमारी बुद्धि इन चीजों में लग रही थी। उनने तो उन्होंने पढ़ाई ना पढ़ने का विचार किया, तो लेकिन उसके लौकिक फादर थे बड़े, वो इनके खिलाफ थे, तो उन्होंने बाबा को लिखा, सहयोगी थे, बाबा ने इनको लिखा लेटर बच्चे को, ओम प्रकाश को, बच्चे तुम पढ़ाई अवश्य करो, तुम जाओगे तो वहां पर तुम्हारे इंतजार में बहुत आत्माएं हैं जो ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठी। तो बाबा के पत्र द्वारा ही वो एडमिशन स्थापन इंस्टीट्यूट में वो आए, और हमारे संयोग हुआ कि हमारे साथ उनका कमरा था, और वो हमेशा हर वक्त रहते थे बिजी अपने योग में, और कमरा बंद, कभी मुरलियां पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी मैगजीन पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कमरा हमेशा बंद होता था। तो मैं हम कहते भाई तुम्हारे कमरे में क्या खजाना है जो तुम खोलते क्यों नहीं हो, खोल के रखो, क्या बात है भाई। तो वो उनको ये लगता था मैं ज्ञान उनको दूं, कोई सुनने वाला भी हो, ये तो लोग तो बड़े टेढ़े हैं सारे, सुने कुछ सुनने वाला चाहिए। बाबा कहते बुड्ढांक वहां मारना चाहिए जहां पर कोई लगने की जगह भी हो, वहां लगाओ। तो वो देखते थे मैं किसको ज्ञान सुनाऊं, ये सारे लोग तो दूसरे हैं। तो एक दफा हमारे से बात चालू की उन्होंने कि आप आत्मा हैं, हमने कहा हम तो आत्मा नहीं है, क्या आप बताओ, प्रूफ बताओ मुझे आत्मा है। बहुत कोशिश की, 3-4-5 दिन चलते रहे, वो कहे आत्मा है, हम कहे हम नहीं है, बड़ी आर्गूमेंट्स, बहुत आर्गूमेंट्स करते रहे, हम भी समझते हुए कि हम आत्मा है तो सब मानते हैं, हिंदू धर्म वाले तो मानते हैं, हमने बड़ी भक्ति की थी, एक टांग पर खड़े होकर भी भक्ति बचपन में की थी, लेकिन हम कहते हम तो आत्मा नहीं है, आप हमें प्रूफ दिखाइए। तो मशीनरी है, जब थोड़ा बहुत उसमें कोई पुर्जा फेल होगा तो खत्म हो जाएगा, हार्ट फेल हो या फेफड़े खराब हो, किडनी खराब हो, तो इंसान मर जाता है। तो उसने कहा नहीं, अच्छा चलते रहे। एक दिन उसने कहा अच्छा भाई आज आप मान जाओ कि आप आत्मा है। तो हमने कहा अच्छा, हाथ मिला लिया, तो हमने कहा भी हम आत्मा हैं, मान लेता हूं, बस आप मानेंगे मैंने यही कहा कि मैं आत्मा हूं, सचमुच मैं बता रहा हूं। उसी समय से पता नहीं क्या ताकत उसके अंदर थी, मेरे जीवन में चेंज आना शुरू हो गया, साइलेंस में चले गए, आत्मा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मेरा नाम भी लौकिक आत्म प्रकाश है, तो वो आत्मा हूं ये अंदर 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 संकल्प करना शुरू कर दिया, बहुत चेंज आया, साइलेंस हो गई, अंतर्मुखता आ गई, दृष्टि वृत्ति पवित्र बन गई, क्योंकि सारा मेन हमारा ज्ञान क्या है, बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अगर केवल अपने को आत्मा भी समझते हैं तो बाबा तो याद आएगा बाद में, और वो आत्मा भी तो ओरिजिनली उसमें गुण है, उसमें जो देखा जाए आत्मा के अंदर भी तो गुण तो है ना, वो बस यही अभ्यास करता रहा मैं, चल जिसको देखूं ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, बाजार में जाए सबको आत्मा देखो, उस वक्त कोई बिंदु आत्मा नहीं थी, हम कहते थे अंगुष्ठ सदृश आत्मा है, ये समझाते थे, तो हम सबको आत्मा देखने लगे, बहुत चेंज आ गया, बहुत खुशी होगी, बहुत हल्कापन आ गया। मैंने कहा कमाल है भाई, ये तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज है। हम सर्वेइंग में जाए, वो सर्वे करते इंजीनियरिंग में, किससे बातचीत करना बंद हो गया, बस इसी एक ही बात में हम मगन हो गए, बताओ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी शांति का अनुभव, यानी सोल रियलाइजेशन हो गया। ये देख लीजिए। मैंने कहा और ज्ञान सुनाओ जी, आपके पास क्या खजाना है। तो बाबा उसने सुनाना शुरू कर दिया, जो वो सुनाते जाए सब बात ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं। परमात्मा शिव है, आज तक किसी ने नहीं कहा। देखो आप किसी ने सुनाया पहले, आज तक शिव शंकर एक बताते थे, राम कृष्ण हनुमान गणेश सब हम परमात्मा मानते थे। शिव ही परमात्मा है, वो ज्योति बिंदु है, हैविंग नो बॉडी, बॉडीलेस है वो। ये भी बात साइंटिफिक है, यानी ऐसा ज्ञान लगा, साइंटिफिक लगा, प्रैक्टिकेबल लगा, रैशनल लगा, कोई भक्ति का एक अंश इसके अंदर नहीं। हम बताएं आपको, कई लोग हमारे भाई बहन कहते हैं ना, ये ज्ञान भी अच्छा उसका ज्ञान भी अच्छा है, कई और साधु सन्यासियों का बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम बताएं आपको, कुछ भी नहीं, यानी जीरो है बिल्कुल। ये सुन लो आप, कई हमारे भाई बहन कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है। अरे क्या सुनाता है, आप कभी सुन के देखो, कभी कहता है ब्रह्म, कभी कहता है ब्रह्म है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बदलते रहते हैं। आप पूछो परमात्मा कौन है, वो आपको ऐसा मुंझा देगा कि आप परमात्मा को भी भूल जाएंगे। आप बताओ, ऐसा मुंझाते हैं आप। कभी कहते जब हम वो देखते हैं ना अपनी उसमें हमारी पीएम टीवी आती है, तो कभी और किसी जगह लग जाए कोई सन्यासी वो बात कर रहा हो, ऐसे बात करेंगे जैसे कोई पता ही कुछ नहीं है। ये इतना ऊंचा ज्ञान सुन करके इतना मजा आया। सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष क्या है, लोग मूझते हैं, मुझे तो इतना अच्छा लगा पॉइंट। हे अर्जुन, गीता में क्या क्या, हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलते रहेंगे, है ना गीता में। ये क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स, हूबहू रिपीट होता है। हे अर्जुन, ये राजे रजवाड़े ये सब पहले भी थे यहाँ, अब भी हैं और फिर भी होंगे। तो जो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई हमें, रियल बाबा ने सिंपल लैंग्वेज में बता दी, वो श्लोकों में है बात, तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही उसके अंदर। इतनी इतना अच्छा ज्ञान लगा, इतना अच्छा लगा कि बुद्धि खुल गई, एकदम गांठें खुल गई। हम छोटे 20 साल की एज के थे, लेकिन पता नहीं क्या बाबा ने बुद्धि को पकड़ लिया, एकदम निश्चय बुद्धि बैठा दिया कि ये ज्ञान, ये समझ में आया ये ज्ञान कोई इंसान नहीं दे सकता, ये स्वयं भगवान ही। निश्चय बैठ गया ज्ञान सुन करके, भगवान ही देने वाला है। योग भी सीख लिया, मुरली भी सुननी शुरू कर दी, 5-7 दिन में सारा कुछ कर दिया। तो हमने कहा बताओ जी आपको ये ज्ञान मिला कहां से है, ये तो बताओ। मैं आप, उन्होंने कहा उस समय कोई चित्र नहीं था, न त्रिमूर्ति था न झाड़ था, उस वक्त 1957 की बात है, अभी चित्र भी नहीं बने थे, बाद में जापान से छप के आए थे। तो हमने कहा बताओ हम मिले उनसे जिनसे आपको ज्ञान मिला है। उन्होंने कहा आप जाओ, बाबा बाबा मम्मा आए हुए हैं दिल्ली में, आप मिलने जाओ। तो पहला दिन जो हमारा हम रशिया में गए थे, हमारा इंटरव्यू लिया कि व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे, तो मैं क्या कहूं। मैंने कहा पहला एक मैं नहीं बताऊंगा, एक था हैप्पी, दूसरा था हैप्पियर, और तीसरा दिन है हैप्पीएस्ट। अब मैं आपको सुनाऊंगा 3 दिन कैसे। तो ये जो ज्ञान मिला हमको बहुत खुशी हुई, यानी हैप्पी हैप्पी डे कहेंगे ये, हम अभी हैप्पी डे कहेंगे, क्योंकि बहुत खुशी होगी, नशा चढ़ गया और सारी कंटेंटमेंट होगी। इन्हीं को जिसे कहना चाहिए संतुष्टता आ गई है इस बात पे भी, हाँ परमात्मा के आत्मा परमात्मा के बारे में संतुष्टता आ गई, बात बिल्कुल राइट लगती है। कुछ भी संशय या कुछ भी क्वेश्चन हमारा नहीं उठा, कोई बोला आप बताओ कितनी जबरदस्त बात है। सारी दुनिया मानती है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, पूछो आप किससे। और बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा, महाभारत हुआ कहते हैं बा, ये मरा वो मरा, तीर छोड़े वो भीष्म पितामह था, ये था दुर्योधन था, ये था वो था, क्या क्या बातें लिखी है। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये ज्ञान तो मैंने दिया है, वो भी कब दिया, द्वापर के अंत में नहीं, कलयुग के अंत में। कितनी बड़ी बात है आप बताओ, रेवोल्यूशनरी बात है ये, कोई इंसान नहीं, एक अथॉरिटी बोल रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, कि ये है क्या, कितनी बड़ी बात है ये। रामायण के बारे में देखो, राम था राम था ये था वो था, क्या क्या बातें हैं। और बाबा क्या कहते हैं, कि शब्द में खत्म कर देते हैं, बच्चे रावण दर्शन वाला कभी था ही नहीं लंका में, आप बताओ कितनी बड़ी, यानी आप सोचो वो कितना वंडरफुल और कितना वो है साइंटिफिक नॉलेज है। ये सुन के बड़ी खुशी हुई। तो हम चाल पड़े बाबा मामा से मिलने के लिए, दिल्ली में रजौरी गार्डन में आए हुए थे, चले रात्रि को पहुंचे। सुबह जब बाबा मामा से मिले, क्योंकि जल्दी जल्दी सुनाना आपको, मिले तो बाबा मामा को देखते ही यही उनकी पर्सनैलिटी, शाइनिंग फेस, फेसेस शाइनिंग, आप देखेंगे अभी भी आप चेहरे देखेंगे, और टावरिंग पर्सनैलिटी। बाबा की पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी, 80 साल के बुजुर्ग थे वो, लेकिन पर्सनैलिटी, बैठते ऐसे थे जैसे कि यंग बैठे हैं, और आईज जिसको देखेंगे ध्यान में चले जाते थे, ऐसी आईज, बिविचिंग, हम कहते हैं बिविचिंग आईज वो कहें, और बड़ा लवफुल। तो हम जब बाबा, मैं किसी ने नहीं कहता बाबा मामा से मिलना कैसे है, तो ऐसे बाबा से अट्रैक्शन हुई, जब बाबा की गोद में चले गए, मम्मा की गोद में चले गए, बाबा ने बड़ा प्यार किया और पूछा, तो बाबा के देखो पहला पहला वरदान क्या था, मैं सुनाता हूँ आपको। बाबा ने कहा बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हो ना तुम? हाँ। मैं कहा 4-5 साल का कोर्स है, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये पहला वरदान सुन लो भृगु ऋषि का कि बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट महावाक्य जो बाबा ने मेरे प्रति उच्चारण किए थे। ही वाज वो हमारे, वो तो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर भी है और सुप्रीम फादर भी है, तो उनके महावाक्य थे हमारे प्रति, बच्चे पढ़ाई काम आने कुछ क्या, इतना समय यानी अभी देखो अभी कितने साल बीत गए, 60 साल हमको बीत गए, तब भी बाबा ने कहा समय कम है, सुन लो क्यों कहा, कितना काम, यानी काम कितना करना है। तो मैंने कहा बाबा तो ठीक, ये तो पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है और 5-4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं पढ़ते क्या करेंगे पढ़ करके। तो हम आए मिलजुल के, वापस आया सब उनसे गोदी लेकर के, बाबा मामा से मिल करके, और बड़े बड़े अपने जो महारथी भाई थे, प्राता जगदीश जी, दादा विश्वकिशोर जी, दादा विश्वरतन जी, ये सारे हमारे पूर्वज हैं, यहाँ फोटो आए कि नहीं पता नहीं, ये पूर्वज सबसे मिले। उस वक्त तो सेंटर बहुत कम थे, बहुत ही कम थे, और सब दादियां भी वही रहती थी, सब वो रहते, दादी प्रकाश मणि, सबसे मिल के और आए, और बाबा को एक लेटर लिखा इंग्लिश में, माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। देखो क्या बाबा ने किया, मैंने उस वक्त हम पढ़ते थे सिविल इंजीनियरिंग में, बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी कॉर्नरस्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग ऑफ द गोल्डन एज। यानी जो एक बहुत बड़ा महल, सत्यु की जो बड़ी बड़ी दुनिया आप बना रहे हैं, उसका एक मैं भी एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूं, न कि मैं पढ़ना चाहता हूं ये इंजीनियरिंग वगैरह। फिर मैंने लिखा बाबा को, आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, सिविल इंजीनियरिंग में ये होता है ना, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज, ये लिखा। देन आई रोट आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, उस वक्त दो साल पहले इकट्ठा होता है सिविल और मैकेनिकल सब, बट आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड फॉर द गोल्डन एज। बाबा हमेशा मुरली में कहते, अभी आजकल कम आता है, बाबा कहते ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है ये किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। होता ना कहीं, सुना होगा आपने, नहीं सुना, सुना नहीं आपने, ये आया है कई दफा आया है मुरली में कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, यहां वो किंग और क्वीन बनेंगे जो सत्युग में राज करेंगे। हम, मैं कहा हम एक पुर्जा बनना चाहते हैं। तो बाबा का भी फौरन 2 दिन में जवाब आया, देखो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिए वो देखो, लिखत में लिखा, वो भी इंग्लिश में लिखा बाबा ने, फिर जवाब भी इंग्लिश में दिया, चाइल्ड लंबा चौड़ा लिख के, नूर रतन ये सब लिख के, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स, याद है शब्द मुझे, एंड टू यूर पेरेंट्स, उनको आप ज्ञान दो, अभी पेशेंट रखो। हमने कहा ठीक है, जो बाबा डायरेक्शन दे रहा है वो ठीक है, हम वैसे करेंगे। फिर खूब हमने ज्ञान देना शुरू किया अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को। हम बस में बैठते थे, जो स्टूडेंट जाते थे उस बस में एक त्रिमूर्ति मैगजीन तब निकलती थी उन दिनों में, आजकल तो वो नहीं, आजकल तो ज्ञान अमृत निकलता है, तब त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती, जगदीश भाई छापते थे, बिल्कुल ठेठ ज्ञान होता था पूरा। कोई ये आजकल तो अनुभव योग कोई कुछ कभी कुछ चीजें आती हैं दैवी गुण, उन दोनों में पूरा ज्ञान। आप एक पेज खोलेंगे परमात्मा सर्वव्यापिनी, दूसरा आर्टिकल होगा गीता का भगवान श्री कृष्ण जी, तीसरा होगा आत्मा 84 लाख ज्ञानी भक्ति, चौथा खोलेंगे आर्टिकल के पतित पामनी गंगा ने, ये आर्टिकल होते थे तब। अभी तो इसकी बहुत किताबें छपती, बहुत कुछ हो गया, उन दोनों में ये आर्टिकल होते थे। हम सारी मैगजीन बांट देते थे उसमें वो बस में, पढ़ो आप इसको, देखो क्या है, बाबा ने कहा सर्विस करनी है, और जहां बस रुकती थी नाम नीचे उतराते थे, सबसे वापस रहते थे। हम कह रहे थे बोलो आपने आपने क्या सुना क्या पढ़ा, कहते ये क्या ज्ञान आपका है, जान पहचान को देते, इसमें ये सर्वव्यापी नहीं जो दुनिया सारी मानती है, गीता का भगवान ये नहीं, ये किसने आप किसने दिया ज्ञान, मैं कहा मेरे से बात करो आप। इतना जोश होता था हमारा, इतना एंथुसियाज्म और मोमेंटम था, हम सुनाते थे आप बताओ परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारा है क्या, परमात्मा परमात्मा को मारा, जैसे मारा हम सुनाते हैं, हम कहते बात तो राइट है। हमारा नशा ऐसा था वो मान जाते थे, स्टूडेंट लोग होते थे, ऐसे करते करते हमारी क्लास होगी हमारे हॉस्टल में, हम अपने कमरे में ही दरी बिछा के और लाल बत्ती जला के वो ग्रामोफोन चला के वो सुई वाला होता है, सुई वाला होता था थाली, बजाते थे रिकार्ड तू प्यार का सागर है, जो जो रिकार्ड होते थे बाबा के, और वो हम क्लास करते थे सुबह सुबह। तो वार्डन कहे तुम लोगों ने क्या कर रखा है, हम कहते हम तो जाते हैं यहां से छोड़ो, बाबा ने कहा सर्विस करनी है, सर्विस नहीं, हमने अपना मकान ले लिया तो सेवा केंद्र शुरू हो गया, फिर दादी जानकी जी आए और दादियां आई वहां, उस वक्त तो दादियां फ्री थी और सेवा केंद्र थे नहीं, तो जिसको बुलाओ तभी आए थे, दादी मिट्टू आई, दादी रुक्मणी आई, भाषण कराया स्कूलों में यहां वहां, बड़ा मजा आया उसमें, सेंटर खुल गया वहां पर, और हम मम्मा के पास जाके बात करते थे, मम्मा अब हमें बहन दीजिए, कहते आप तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को बहन कैसे मिलेगी, कोई परिवार निकलेगा तभी तो बहन निकलेगी, बहन मिलेगी आपको, तो हमने कोशिश की परिवार मिला तो पटियाला में सेंटर खुला, पहले पटियाला में भूपिंद्रा रोड पर सेवा केंद्र हम लोगों ने, हम क्या बाबा ने हम लोगों से खुलवाया था, हम वहां पर रहते थे, ओम प्रकाश भाई भी रहते थे, खुद खाना बनाते थे, रोटी बनाते थे, उनको भी खिलाते थे, हम भी खाते थे, पैसे बचते थे वो सेवा में लगाते थे। वो इस प्रकार से सेवा शुरू होगी और जगह, फिर नाभा में सेंटर खुला, फिर चंडीगढ़ में सेंटर खुला, ये पटियाला से ही चंडीगढ़ सेंटर खुला जो हम बताए आपको, हमारी हम लोगों ने जाकर के पोस्टर लगाए, मकान किराया पर लिया, उस वक्त पहला जो मकान था हमने 6 मास का किराया 840 रुपए था, उस वक्त 840 रुपए निकालना भी बड़ा मुश्किल होता था भाई, 140 रुपए रोज महीने का किराया, बाबा ने कहा इतना महंगा मकान ले लिया देखो तुम बच्चों ने, 140 रुपए का मकान ही बहुत महंगा था उस वक्त, एक मेजर की किसी कमांडर की कोठी थी ले ली। इस प्रकार से बाबा ने जो कहा सेवा करो तो सेवा में लगे रहे, फिर दूसरा बाबा ने कहा बच्चे तुम वहां जाओ अपने माँ बाप को भी ज्ञान दो, तो वहां गए, हम सुनाते हैं आपको, हमारी माता जी 110 साल की अभी आजकल अभी बीमार है, हॉस्पिटल में मैं छोड़ के आया हूं, यानी शी इज एट उसके अंत समय का इंतजार कर रहे हैं वो, तो और बाबा ने कह दिया 2 दिन पहले मुरली में, अम्मा मरे तो क्या खाओ और बाबा जाए तो हलवा खाओ, कितना स्टिंक, क्या ज्ञान है ये बताओ, कितना ये नष्टो मोह बनाने वाला ज्ञान है कि रोना बिल्कुल नहीं, कितनी बड़ी बात है ये, कौन कहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है हम जाकर उनको ज्ञान देने की घर में गए, समर वेकेशन था, उनको ज्ञान सुनाया तो माताजी पिताजी सब ज्ञान में चल पड़े, हमारे में फोर्स बहुत था, हम कभी ना डरते थे किससे, और हमें क्यों ज्ञान पर बड़ा निश्चय था कि ये भगवान के सिवाय कोई ज्ञान नहीं दे सकता, ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, कहीं ना शास्त्र में है ना किसी साधु सन्यासी ने बोला है, सब कथे किससे कहानियां सुनाते हैं, ये वो रामायण की कहानी ये कहानी जो कि सच है नहीं, जो बाबा कहता है रावण ऐसा था नहीं और राम ने उनको वनवास मिले, सीता ऐसी तुम सीता सब बैठी हो ना, 10 साल वाला रावण को था, तो कितना उसको आडंबर बना 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 के कितना बड़ा कर दिया है, देखो बाबा क्या कहते हैं और दुनिया क्या कहती है। तो बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों को ज्ञान सुनाया, सब ज्ञान अच्छा लगा, रोज हम क्लास करें, मुरली सुनाए, सब कुछ करें। तो हमारे लौकिक फादर बहुत भक्ति करते थे, बहुत, यानी वो भागवत पुराण की बहुत पढ़ते थे और लोगों को सुनाते भी थे, अकीम थे वो। तो मुझे कहते हैं ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा है, परंतु बाबा अगर आपका मुझे कुछ दिखा दे, कुछ साक्षात्कार करा दे, तब मैं निश्चय बुद्धि बनूंगा। मैंने कहा मुझे अभी तक हुआ नहीं, मैं अभी दिन से चल रहा हूं बहुत समय से, और हमें तो बाबा कहता है साक्षात्कार तो किसी का कोई बात इसकी बहुत वैल्यू नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं रिकमेंडेशन कैसे कर सकता हूं आपकी। फिर भी मैं, चलो भोग लगाते हैं, गुरुवार को हम वहां भी भोग लगाते थे। तो एक दिन वो भोग लगा रहे थे तो वो उठ के खड़े हो गए बीच में ही सभा में ही, और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में नहीं आया। तो मुझे बड़ी खुशी, तो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो तो रहा है यार, समझे, समथिंग इज हैपनिंग। तो आई वॉज हैप्पी, कुछ उठ के क्यों खड़े हुए, हम सब बैठे ही उठ के खड़े हुए। तो फिर बड़े नीचे उतरे उदास, बड़े उदास, वो पकड़े किसी को, वो पकड़ में ना, इधर पकड़े इधर पकड़े नहीं आए। मैंने कहा क्या हुआ उनके पिताजी, कि क्या क्या मैं कहीं गया, पता नहीं कहां गया। तो मुझे बहुत छोटा सा सुंदर श्री कृष्ण देखने में आया, मैं उनको पकड़ू, यहां पकड़ू तो वहां चला जाए, वहां पकड़ू तो वहां चला जाए, मेरे हाथ में नहीं आया, बता रियली बता रहा हूं आपको। तो मैंने कहा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बड़े भगत थे, भागवत बहुत पढ़ते थे, भागवत पुराण, गीता, वो नहीं भागवत गीता नहीं, भागवत पुराण एक बहुत बड़ा होता है, वो गुरुमुखी में पढ़ते थे, हमारे यहां गुरुमुखी होती थी उसमें पढ़ते थे, हमें भी सुनाते थे, हमें बहुत सुना ये धुंधकारी गौकरण ये वो कहानियां किसे बहुत सुनने हुए थे हमने, वो आप लोगों ने सुने होंगे शायद। तो हमने कहा फिर क्या हुआ जी, कह श्री कृष्ण देखा, देख तो लिया लेकिन उनको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ने में नहीं आए। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, कि फिर आपके बाबा जी दिखाई दिए, अभी तक हमारे बाबा जी थे उनके नहीं थे। मैंने कहा क्या, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, धारणा पर चलोगे और ज्ञान को फॉलो करोगे, यानी सब प्रकार से ठीक चलोगे, तो तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो मैंने बाबा, उन्होंने कहा ठीक है मैं अब चलता हूं। तो उन्हें ज्ञान तो समझा हुआ था, इतने थे भी बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं, बीच के थे, उन्होंने धारणा भी शुरू कर दी, ये भी कहा लहसुन प्याज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कर दिया। तो बस जी शुरू से वो योग लगाने शुरू कर दिया उन्होंने, सब हो गया। वो हम उनको योग लिख के देते थे, आत्माओं पवा का बच्चा हो जाए, वो कमेंट्री जो होती है हम लिख के देते उर्दू में, उर्दू जानते थे, वो जाएंगे खेतों में पढ़ते हुए अंदर अंदर रिपीट करते जाएंगे ये प्याज। तो फिर अगले गुरुवार हम भोग में बैठे, सब बैठे सारे, और गांव वाले भी थे ये भी बैठे, फिर ये उठ के खड़े हो गए। फिर वो इधर जब श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बड़े आंसू भाए, बहुत उनको खुशी हुई, बहुत खुश हुए, बड़े वो संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने कहा हाँ जी ये आपके जो बाबा हैं बिल्कुल ठीक है, भगवान आ गया है, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, जो हम अभी भागवत में पढ़ते आते थे, जो हम सुनते आते थे, वो रामायण का विश्वामित्र बना कर देते हैं, वो रामायण की वो भागवत रामलीला में। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है मैं मानता हूं, और आज से बिल्कुल ये आप मानेंगे। वो इतने अच्छे संदेशी बन गए, बात मत पूछिए, बड़े भोले थे, बहुत सात्विक थे वो, अपने दुनियावी तरीके से बहुत बहुत रहमदिल थे वो, बिल्कुल बन गए वो संदेशी बन गए। हम उनसे कुछ कहें, बाबा से पूछ के आओ, ऐसा एक्यूरेट संदेश लेके आते थे, बात मत पूछिए। हमें तो बहुत खुशी होगी कि देखो हमारा कोई परिवार का व्यक्ति तो ध्यान में जाने लगा, तो सारे हमारे घर वाले माताजी पिताजी तीन चार भाई बहन सबको इतना अच्छा लगा, वो भी ज्ञान में चल पड़े धीरे 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 धीरे। तो पूरा परिवार जो है हमारा ज्ञान में चलता है, पिताजी तो चीज छोड़ दिया, माताजी छोड़ने वाले हैं, और वो हमारे वो भाई जो हमारे भाई हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, कोई सारे 80 साल से ऊपर उम्र हो चुका है, 70-75 साल से ऊपर है, क्योंकि हम 60 साल पहले ज्ञान में आए थे, तो तो देखो कितने 20 साल के तो होंगे सब और उससे ज्यादा, तो ज्ञान में चलना और लगभग समर्पण टाइप के हैं, बाबा के प्रति समर्पण है। लक्ष्मण भाई हमारे सोनीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, भाई सिस्टर है वो अमृतसर में है, पूरा का पूरा परिवार जो था ज्ञान में आ गया। तो इसी प्रकार से हम सेवा में लगे रहे, जगह जगह लौकिक अलौकिक सेवा केंद्र खोलते के जगह, कभी पटियाला, कभी देहरादून, कभी जलंधर, कभी चंडीगढ़, तो हम लोगों ने बाबा ने मिलके बाबा मम्मा के डायरेक्शन से खुला स्पेशल हर क्या का। बाबा से हम बहुत कम बात करते थे, मम्मा से हर एक बात पूछते थे। मम्मा से कहेंगे हमें कोई बहन दीजिए, तो मम्मा से ही बहन मंगवा के लेके आते थे। चंडीगढ़ के लिए स्पेशल कानपुर से एक बहन आई थी, प्रकाश बहन, वो पहले वहां पर रही थी, वो वकील की युगल थी, पढ़ी लिखी। हमने कहा मम्मा ये चंडीगढ़ तो पढ़ा लिखे शहरों का है, तो यहाँ पे एक बहन पढ़ी लिखी चाहिए, तो वो आई थी। इस प्रकार से सेवा करते रहे करते रहे, और इसी बात चार साल बीत गए, पांच साल, और हम इंजीनियरिंग हमारी पढ़ाई पूरी हुई। हम बताए ज्ञान में आने के बाद हम पढ़े जरूर परंतु विद डिसइंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई। आप मानेंगे कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ है, कभी भोग है, कभी कहाँ जाना है, कभी मम्मा हापुड़ में जाना है, कभी कहाँ जाना है, इसी काम में लगे रहे। क्लास में जाते नहीं थे हम, जब भी जाते थे तो वो हाजिरी बोलता था, कभी चलेगा हफ्ते दो हफ्ते में एक दफा। एपी मेहता हमारा नाम था, हम कहते यस सर, सारी क्लास वाले हंसते थे, देखो ये कहाँ कौन आ गया है, इतने दिन तो आया नहीं, अभी आया ये पढ़ने के लिए, क्या पास होगा, क्या पढ़ाई होगी। और आप मानेंगे हमें आप बगैर पढ़ाई किए हुए हम फिर भी पास हो गए, आप बताए मालूम नहीं क्यों पास कर दिया उसने, आई वॉज पास, चाहे वो कैसी डिवीजन भी आई पास हो चुके थे हम। जब आए थे ज्ञान में तो टॉप पे थे अपनी क्लास में, जब पास हुए तो लास्ट में पास हुए, ये बताए आपको। आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट टू पास द यूनिवर्सिटी एग्जाम और विदाउट एनी स्टडी, कोई पढ़ाई नहीं की। तो चलो हमने कहा हम डिग्री लेने भी नहीं गए, मारो गोली तुम अपने पास रखो, हमने हम कहा हमें डिग्री चाहिए नहीं, क्या करेंगे। और हम फिर बाबा मम्मा के पास, बाबा ने तो कहा था बच्चे आओ, सब ज्ञान में आ गए तो लोग माता पिता को लेके बाबा मम्मा के पास आए, या मधुबन में आया बाबा मम्मा के पास। तो उससे पहले मैं और सुनाता हूँ, फिर बीच बीच में बाबा मम्मा के पास है। बाबा का एक और जो इंसिडेंट है वो बहुत जरूरी सुनाने वाला है। हम आए जब इंजीनियरिंग वाले पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर था हम आए, तो बाबा उस वक्त कुछ नहीं था, केवल बीच का जो मकान है ना ये टीन का छप्पर अभी भी है, इसके अलावा और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ना हिस्ट्री हॉल था, ना ये हॉल था, ना वो था, आगे कुछ नहीं था, ना वो ट्रेनिंग सेंटर था, ना शांति स्तंभ तो बाद में ना वो भी नहीं था, ना इंद्रप्रस्थ था, सारा टेनिस कोर्ट था। और हम आया बाबा उस वक्त क्या खेल रहे थे बच्चों के साथ, होता ना बच्चे बच्चों को बाबा खिलाते थे ना, खिलाना एक खाना भी खिलाना और ये खेल भी खिलाते थे, तो मतलब आप बताओ क्या खेल रहे होंगे। नो नो नो, क्रिकेट खेल रहे थे बताओ, क्रिकेट होता नहीं आजकल गलियों में ही खेलते हैं, बच्चे को देते हैं तो लगाते हैं और वो बच्चे पकड़ते हैं, हंसाना बहलाना ये करना। बाबा हमेशा बच्चों को खिलाते भी थे, खिलाते भी थे और घुमाते भी थे, सब बाबा अपने बच्चों के साथ करते थे खेल। तो मुझे मैंने कहा क्रिकेट खेल दिया, और बच्चे सब भाई पकड़ते थे, बहनें थी भाई भी पकड़ते थे, दादा बिछुड़ता ऐसे फेंकते थे, बाबा लगाते थे ऐसे और वो करते थे। देखो एट द एज ऑफ कितनी एज थी, 80 की उम्र थी, 80 की एज में और इतनी टावर पर्सनैलिटी, बाबा खेलते थे और बच्चे पकड़ते थे और हंसते बहलते थे। मैंने कहा मुझे क्या याद है भागवत का वो है ना श्री कृष्ण वो गेंद खेलता था ना, वो जाके जमुना में डाल दी गेंद, होता था ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब यह पूरा भागवत, उस वक्त भागवत ज्यादा था ज्ञान कम था, भागवत बाबा रिपीट करता था। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो, खेल रोक दिया मुझे, बच्चे कहते खेल मत लो फोटो। मैंने कहा बाबा क्यों, बाबा ने देखो फिर क्या महावाक्य उच्चारण किया, देखो बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये है, शिव बाबा ब्रह्मा दोनों बाबा, दोनों ब्रह्मा बाबा के आत्मा का आएगा ना शिव बाबा की आत्मा का आएगा, शिव बाबा का परमात्मा का भी नहीं आएगा, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। तो ये छीक, ये शरीर तो किसी काम का नहीं, क्या फोटो लेनी है। देखो बाबा हमेशा ये शिक्षा दी कि शरीरों को भूलना है और आत्मा को याद करना है। शिव बाबा को भी याद करना है, स्वयं की आत्मा को याद करना है और दूसरी सबकी आत्मा को देखना है। ये बाबा ने उस खेल के दौरान भी शिक्षा दी। मैंने कहा बात तो राइट है, तो हमने उसके बाद कभी भी आज तक मेरी बाबा के साथ फोटो नहीं आ देखा। कितने साल हम बाद 57 से लेकर के 69-12 साल तक बाबा से मिलना जुलना, कार्य करना, डायरेक्शन लेना, करेक्शन करना, इंस्ट्रक्शन लेना, सब कार्य व्यवहार किया उनके साथ मिलकर के, उनकी बातें सुनी। बाबा ने एक दफा कहा बच्चे तुम हर हफ्ते मेरे पास आया करो दिल्ली से यहां, इतना तक नजदीक बाबा के साथ है। लेकिन हमारी फोटो एक भी उनके साथ नहीं है। मैं ठीक है ड्रामा में नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से बाबा ने यह कहा कि बच्चे फोटो की दरकार नहीं है। हमेशा बाबा शरीर से बाहर निकालते थे, कोई माताएं मिले, भाई मिले, गरीब मिले, अमीर मिले, कोई मिलता था बाबा सबको गोद देते थे, आओ बच्चे आओ ऐसे कहते, बड़े प्यार से गोद। माताएं भी आप सभी कन्याएं, माताएं, गरीब अमीर, मोटा ताजा, सब बाबा की गोद में जाते थे। बाबा उसको गोद में दे करके उसको टोली खिलाते थे, थपथपाते थे, बात करते थे, यानी बाबा पूरी भाषणा उनको देते थे एज ए फादर, सुप्रीम फादर कहो। और ब्रह्मा बाबा भी तो ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है, और मम्मा भी हमारी ग्रेट 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 मदर है, देखो बहुत है। वो मम्मा की भी गोद में जाते थे, क्या कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मेल हो फीमेल हो, मम्मा उनको गोद में लेती थी, टोली खिलाती थी, हाल चाल पूछती थी, उनकी समस्या सुनती थी। बाद में ज्यादा कारोबार में ही मम्मा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, पहली वो करती थी। मम्मा में ये था, चलेगी ना मुंह मम्मा जैसे धरनी भी जमीन भी न दुखे, बहुत धीरे धीरे धीरे, जो कोई बात करेगी मम्मा पहले मुस्कुराएगी फिर बात करेगी। हम बताए उनका ऐसा होता, चलना बोलना उठना बैठना हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। कोई आपको इंस्ट्रक्शन देनी हो पहले मुस्कुराहट के पर करती। एक दफा क्या था, दिल्ली में मैंने पूछ लिया किसी दादी से, अभी हम नए 7 दिन के थे, किसी जो मुझे ब्राह्मणी मिलेगी, मैंने बताओ ये ना यहाँ भंडारी है ना, कोई पूछता है कोई भी, कोई लेना है कोई देना है कोई कोई कुछ इशारा भी कोई करता नहीं है, तो चल कैसे रहा है ये, हाउ इज गोइंग ऑन, कैसे सारा यज्ञ आपका यज्ञ हो या कारोबार चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मम्मा साथ थी, मम्मा को कह दिया उन्होंने, मम्मा आत्म ये पूछता है क्या चल रहा है, तो मम्मा ने क्या कहा होगा बताओ। मम्मा बड़ी मुस्कुराई, मुस्कुरा करके फिर ऊपर ऊपर की तरफ इशारा कर दिया, यानी वो कराने वाला है बाबा। तो मैंने कहा ये हो सकता है ठीक ही हो ये, क्योंकि वहां पर लोग हमारे यहां आती थी ध्यानी दादी एक, वो आके हर गुरुवार को भोग लगाती थी, ऐसे लगाती थी, यूं हाथ करती थी, कभी फल देंगे कभी फूल देंगे। मैं कहा मालूम नहीं, कोई पूछता, कोई कहता ही नहीं है भी तुम कुछ करो, या कोई इशारा भी नहीं करता। तो फिर तो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन मम्मा की देखो रॉयल्टी, देखो मम्मा को बताने का तरीका देखो, कि इशारा ऊपर है, ऊपर वाला आपको टच कौन करता है, ऊपर वाले टच करता है बुद्धि हमारी, हाँ यज्ञ में डालना है ये करना है सब करना है, तो कोई मांगता थोड़ा है, ऊपर वाला टच करता है तो ऊपर वाला देता करता है कराता है ना। तो ये हमने देखा कि बहुत रॉयल्टी थी, अब भी है, तब भी रॉयल्टी थी। मम्मा तो बहुत रॉयल थी जबरदस्त, बाबा तो सागर की तरह उछाल मारते थे ऐसे, कभी कुछ किस प्रकार से। मम्मा की जो वीणा होती थी एक पॉइंट, आप देखते हैं कि एक पॉइंट को सिद्ध करती थी, सर्वव्यापी करना है, गीता का भगवान को करना है, एक एक पॉइंट को क्लियर, जैसे नए बच्चों के लिए भी वो ठीक होती थी। और बाबा कहते हैं मेरे पास नए बच्चे ना आए, मेरे पास तो पुराने समझे हुए पवित्र पावन वही बैठे जो मेरी वो बोछार को जो है वो धारण कर सके, ऐसा था। तो इस प्रकार से बाबा मम्मा के साथ हम चलते रहे। फिर अब इंजीनियरिंग हमने जैसे कैसे पास कर ली, मैंने कह दिया, फिर हम लौकिक माता पिता को ले आए वहां पर। और हम बताएं आपको, ये पहली बात यह है कि बाबा को हम उसे मदर भी कह सकते हैं, शी इज अवर मदर। हम बच्चों को जन्म दिया है, बहुत फेस करना पड़ा है, हम बताएं आपको, सिंध से लेकर इतना फेस किया, बात मत पूछिए। इतना देखो आप बताइए, अपना तन मन धन जान सब कुछ लगा दिया। आज मुरली में था ना, आज क्या मुरली में था, यही सब कुछ अर्पण कर दिया और यज्ञ की स्थापना की। और बाबा ने कहा फॉलो करना है, हम बच्चों को भी फॉलो करना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ट्रस्टी बन के संभालना, कोई भी एक पैसा हमारा गलत चीज में गलत काम में नहीं जाना चाहिए। तो बाबा ने बिगर देखे अभी आगे क्या होगा, बच्चे भी हैं सब, वो अपने सारा परिवार ज्ञान में लाए, किसी को छोड़ा नहीं। फिर बाद में चले गए और बात, लेकिन तन मन धन जन नेम एंड फेम आल्सो, इतना नाम था बाबा का, बात उसको मुखी कहते थे अपने सिंध का। और वो उनकी जो दुकान थी वहां पर, ये कलकत्ता में बहुत मशहूर दुकान, आजकल भी लिखा हुआ है न्यू मार्केट में, लकी राज की, मशहूर लकी राज कहते थे, मशहूर पुरानी दुकान है, पहले हम कहते लिखा, पता नहीं पहले लिखा हुआ था ये। और उनका कितना कनेक्शन राजाओं से था, राजाओं से भी कनेक्शन तोड़ा, सारा धन भी अर्पण कर दिया, अपने परिवार भी अर्पण कर दिया, सब कुछ अर्पण किया। और बाबा ने एक दफा प्रश्न पूछा था, ऐसा क्यों किया बताओ, ऐसा क्यों किया बोलो। बाबा ने ये खुद ही जवाब दिया, बच्चे ताकि मुझे अंत में कुछ भी याद ना आए। सुन लो, तो हम भी क्यों करते हैं, अंत में उनको कोई याद आया ना, लौकिक था, अलौकिक, दादी के हाथ में हाथ दिया और चले गए, वो हो गया, अव्यक्त हो गए। देखिए, और अभी भी, अभी तक भी, पहले 36 से 37 से लेकर कितने साल, 69 था, कितने साल हुए, 37 साल, 37 साल तक बाबा उनमें प्रवेश करता रहा, बाबा का साथ था, अभी भी बाबा उनके साथ है। ऐसी महान, क्या ग्रेट ग्रेट जो आत्मा है, कितनी जबरदस्त है, जिसको भगवान का साथ है। हम तो कहते हैं हमें साथ, बाबा आप मेरे साथ ही हो, हम तो कोशिश करते हैं आप बाबा मेरे साथ हो, वो उनके अंदर बाबा साथ है, बताओ इतनी ऊंची आत्मा है, बताओ तो कितना उनको सहन करना पड़ा, बताइए। रिश्तेदार खिलाफ हो गए, सारे सिंध वाले खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट खिलाफ होगी, साधु समाज खिलाफ हो गया, सब कुछ खिलाफ हो गया। और हम जब ज्ञान में आते भी खिलाफ थे, बाबा का नाम सुनते ही चौंकते थे, वो भाई वही सिंध का वो वही जिन्होंने 116,108 रानियां पता नहीं क्या क्या उनके नाम बदनाम कर रखा था, हम के हमें तो पता नहीं, आपको कैसे पता है कि उनकी 108 रानियां थी, ये था वो। तो अभी जो श्री कृष्ण पर कलंक थे, बाबा पर कलंक लगाते थे, आप बताए कितना फेस करना पड़ा। अब तो खैर वो जमाना बीत गया, पहले अपोजिशन किया, फिर थोड़ा एडजस्टमेंट हुई, फिर थोड़ा अप्रिशिएट किया, अब अप्रिशिएट करते हैं, अब अप्रिशिएट हम कहते हैं यही उनको मानना पड़ेगा कि यही है और यही है और यही है, और इसके अलावा कोई वर्ल्ड का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। हम बताए आप इस प्रकार से किया, बाबा के पास है, बाबा ने कहा मैंने तो कहा था आपको, बच्चे जब डिग्री लेके आए, पास कर ली इंजीनियरिंग, कोई जॉब करने के अधिकार नहीं, स्पष्ट बाबा ने कहा, नो जॉब, कोई इंजीनियरिंग करने की जॉब करने की दरकार नहीं। और फिर हमें भेज दिया दिल्ली में जगदीश भाई जी के पास, 3-4 साल वहां सेवा की, वहां ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर वो एक और इंस्टांस है, चित्र बनने शुरू हुए थे, एग्जीबिशन बननी शुरू हुई, तो हमें लौकिक बाप से वर्षा मिला था, हमने चित्रशाला खोल दी, चित्र बनाने शुरू करा दिए, आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर दिए। तो एक बार मैं 20 चित्रों का सेट लेकर के बाबा के पास आया, मैं एक और वरदान सुनाता हूं आपको। तो आए, हिस्ट्री आल तब बन चुका था, दीदी और बाबा या मम्मा थे, सारा पूरा चित्र 20 देखे, बाबा को अच्छे लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, क्या कोई तो बनाने वाला चाहिए, आजकल तो चित्रों की वो सब बहुत सेवा शुरू हो गई थी। तो बाबा चित्रों को देख के अपने कमरे में आए, आप कमरा देखा ना आपने, ये गद्दी है, बाबा की चारपाई है, छोटा कमरा था, अब तो बढ़ा दिया है। तो मुझे बुलाया, बच्चे आओ मेरे पास आओ, मैं बाबा के पास गया, तो बाबा ने कहा बच्चे साथ गद्दी पर बैठो, बिठाया, मैं तो नहीं चाहता था बैठना भी, इतना बड़ा बड़ा बाबा, ग्रेट ग्रेट, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं कैसे बैठूं, लेकिन बिठाया। और बाबा ने फिर महावाक्य कहो या वरदान उठावन किया, उसे बहुत अच्छा उमंग उत्साह आया। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, बच्चों की गद्दी, गद्दी में बिठाया ना अपने, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, कहां पर है, सतयुग में, गोल्डन एज में। आप देखो, आप भी बाबा की गद्दी संभालते हैं, किसका आपका, कोई दुकान दुकान वाला होगा, कोई ऑफिस वाला होगा, कोई सुपरिंटेंडेंट होगा, कुछ होगा, वो गद्दी किसकी है, क्या समझते हैं आप, घर किसका है, वो पक्का, तो ये समझो वो बाबा का है, मेरा नहीं है। अगर ये समझेंगे बाबा का है, बाबा का समझ कर चलेंगे और बाबा के कार्य में लगाएंगे भी, ये नहीं कि समझे केवल लगाएंगे, तो वो जो गद्दी बाबा की समझेंगे तो वहां भी गद्दी मिलने वाली है, पक्का है। इस प्रकार से बाबा से मिलते जुलते और भी बहुत बातें हैं, करते करते क्या बन गए, बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन गए 69 में, क्या बन, कर्मातीत फरिश्ता बन गए। और हमको क्या बनना है, अभी कर्मातीत क्या बनना है, फरिश्ता बनना है ना, कर्मातीत फरिश्ता। कहां तक बने हैं ये बताओ मुझे, कहां तक बन चुके, कितना फासला बाकी है, बोलो, नजदीक पहुंच गए, हां या ना बोलो भाई, नजदीक पहुंच गए, कमाल है, फिर बहुत खुशी की बात है, नजदीक पहुंच गए। देखो कर्मातीत, मैं थोड़ा 5 मिनट बन गया और ले लेता हूं। देखो कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली पहली स्टेज पता क्या है, फर्स्ट स्टेज विकर्माजीत, ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें तो पास होंगे आप, जो पास है हाथ खड़ा करें, जो कई बहुत तो कर नहीं रहे, कदे विकर्म होते हैं अभी भी, तो कर्माजीत कैसे बनेंगे बताओ। पहली स्टेज है कि विकर्माजीत माने कोई पाप ना हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी से विकर्म खत्म, नो विकर्म नाउ। अगर अब भी विकर्म होंगे तो कब चुप्त होंगे फिर, मैं तो समझता कोई विकर्म होता होगा, विकर्माजीत तो है ही है, मैं आई, मुझे फेथ है कि आप सभी विकर्माजीत है। सेकंड स्टेज कौन सी है बताओ, विकल्पाजीत, नो विकल्प, ब्राह्मण के मन में बुद्धि में अब विकल्प नहीं हो, यानी नेगेटिव संकल्प नहीं हो, ऑलवेज पॉजिटिव, जो बाबा ने बताए हुए, इसमें भी पास होंगे आप, ठीक है, यस और नो, यस, उसमें भी पास है। ये नो विकल्प, विकल्प नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, अगर विकल्प आया जो बैटरी आपने चार्ज की योग द्वारा, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सुन लो, ध्यान रखो, डर होना चाहिए, वो हो, मैंने योग किया, कमाई की, ये किया और विकल्प आया मुझे, तो बैटरी डिस्चार्ज, तो इसलिए विकल्प जीत भी बन गए। थर्ड कौन सी स्टेज है कर्मातीत बनने की, थर्ड स्टेज कौन सी है बोलो, व्यर्थातीत, व्यर्थ भी नहीं चाहिए, वो जो बाबा सुनाते ना कि बहने सुनाती हैं, क्यों क्या कब कैसे कौन, ये फालतू की बातें, और ये भी नहीं, अभी आप बैठे आपको पटियाला क्या, ये चंडीगढ़ आ जा ख्याल, ये भी व्यर्थ है, जो संकल्प चाहिए वो संकल्प आना चाहिए, वो है समर्थ, समझा। तो तीसरा है व्यर्थ अतीत, ठीक है, उसमें भी बाबा कहता थोड़ा बहुत होगा शायद बच्चों में, बाबा को फेथ है मेरे बच्चों में व्यर्थ भी बहुत कम है। फोर्थ स्टेज कौन सी है बोलो, फोर्थ स्टेज यह है कि हमारा हर व्यर्थ के बाद साधारण भी नहीं हो, अभी क्या है, हम ज्यादा संकल्प साधारण होते हैं, जैसा कोई मीनिंग नहीं है, अभी जैसे आप ऊपर से नीचे से ऊपर आए, क्या सोच रहे थे आप, नथिंग, ऐसे आ रहे थे बस, खाना खा रहे हैं क्या सोच रहे हैं, नथिंग। हमारा ब्राह्मणों का समय नथिंग में बहुत जा रहा है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल में जा रहा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे टाइम ये है कि जो संकल्प आपके कुछ नहीं है, जो नील में जा रहे हैं उसको पॉजिटिव में बदलो, समर्थ संकल्प बताओ और कुछ ज्यादा मत सोचो बहनों भाइयों, ज्यादा सोचने की दरकार नहीं। जो बाबा ने हमको समर्थ संकल्प दिए हैं, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां का, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, लाइट और माइट हूं, मस्तक मणि हूं, देखो कितने बाबा ने पॉइंट्स दिए हैं पॉजिटिव है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं मिनी ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ये पॉजिटिव संकल्प है। परम धाम का वासी हूं, बाबा का बच्चा हूं, बाबा को देखो, बाबा गुणों को याद करो, बाबा को संबंधों से याद करो, डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बेलविड माशूक। इन संबंधों से बाबा को इमर्ज करके याद करो, इन्हीं बातों में लगे रहो। नो नेगेटिव संकल्प, नो व्यर्थ संकल्प। नेगेटिव को खत्म करने के लिए और साधारण संकल्पों को खत्म करने के लिए इन पॉजिटिव संकल्पों को बार 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 रिवाइज करो, तब रियलाइज होगा, अदरवाइज नॉट। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आप, इन संकल्पों में रमण नहीं करेंगे, तब तक रियलाइजेशन नहीं होती। तो ये फ्लो ऑफ प्योर थॉट्स होगा, तभी हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। देखो इस संगम पर अगर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्त नहीं किया, ना सत्युग में मिलेगा, ना त्रेता में मिलेगा, ना द्वापर में मिलेगा, ना कलयुग में मिलेगा, ये अभी मिलता है संगम पर। अगर ये संगम का वक्त भी खोया गया तो फिर हम बहुत वंचित रह जाए। हम बताए, आप पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या है, दादियों से, बहनों से, बड़ों से पूछो, और हम वो कैसे अनुभव करें हम बताएं आप। और याद में रहने की कोशिश करो, और जब तक हमारे संकल्प शुद्ध विकर्म तो बात है, विकल्प उस व्यर्थ भी खत्म नहीं होंगे, हमारे समर्थ संकल्प होंगे, तभी हमारा जो है हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन सकेंगे। यही हमारा लक्ष्य है कि हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बने, उसका पुरुषार्थ यही है। पहला संकल्प, अगर हमने संकल्पों को ठीक कर लिया, हमारी स्मृति भी ठीक, हमारी वृत्ति भी ठीक, हमारी कृति भी ठीक, हमारी स्थिति भी ठीक, और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट जो चीज है दैट इज संकल्प। हम सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे, और बीच बीच में मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, मैं बिंदु और बाबा बिंदु, बीच में नो डिस्टेंस, ऐसा याद में भी परम धाम में बैठ के भी याद करते चले, जिससे कि अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। और आप तो करते ही हैं, आप करते होंगे, आप इतने भट्टी में हैं, जरूर करते, पुराने लग रहे हैं आप, तो जरूर इस बात में अमल करें। अगर अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे बताओ, और समय तो बहुत कम है ही है ही है ही। पहले वैसे कहते थे बाबा कि काम बहुत करना है, अब तो वैसे भी आप दुनिया की हालत को देख करके देखें, जो बाबा कहता था वो सब बातें हो रही है। आज से 60 साल पहले कहा था, 80 साल होने वाले तब कहा था, विनाश विनाश विनाश, वो बिल्कुल सामने हो रहा। और कई मिसालें हमारे पास हैं, अब टाइम नहीं है, बहुत मिसालें हैं कि कैसे जो बाबा ने कहा था वो सब कुछ अभी हो रहा है। इसीलिए अब जागोए हम सभी, और याद का प्रसाद करें, तन मन धन लगा के सेवा करें, लोगों को संदेश दें, पहले अपने को चेंज करें, स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? आप सबने भी अनुभव किया ना बाबा के साथ का? आप देखो भाई साहब को 80 साल हो गए हैं, समझा? तो आप देखो ये कितने बड़े भाग्य की बात है, महसूस करने की बात है कि स्वयं सर्वशक्तिमान है ना, विश्व नियंता, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जिनको सारी दुनिया याद करती है, जिनको पाने के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो हमें मिल गया है। कितने बड़े भाग्य और नशे की बात है ना, हमें कौन मिला है? और हम और आप सभी इतने भाग्यशाली है कि उनकी कर्म भूमि पर, ये कोई सोच नहीं सकता है ना कि भगवान कभी आएंगे, आएंगे और मिलेंगे, और न केवल मिलेंगे परंतु रोज हमें आके पढ़ाएंगे इतना धीरज पूर्वक। समझा? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान इसलिए भगवान है कि उनमें धीरज बहुत है, हम जैसे बच्चों को पढ़ाने की रोज प्यार से वही बात बताते हैं और हम सालों साल से पढ़ते हुए नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी गुस्सा नहीं करता। बाबा ने बीच में कहा था मैं कभी क्रोध करता है बाबा कभी नहीं, वही प्यार से मीठे बच्चे कहके। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? हम किसी को एक बार कहे ना माने, चलो बहुत हिम्मत करके दोबारा, तीन बार, चार बार तो बस बहुत हो गया है ना, कहीं बस बस अभी ये बदलने वाला नहीं है। कभी हम निमंत्रण देते हैं तो भी क्या कह देते हैं, बहन जी इसको कितनी बार निमंत्रण दिया, दो बार दिया, चार बार, बस छोड़ो अभी ये आने वाला नहीं है। बाबा ऐसा करते हैं नहीं, तो इसलिए बाबा ऑलमाइटी है, समझे? तो ये जितना महसूस करेंगे उतना ही बाबा की श्रीमत पर चल सकेंगे।